मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 13 नवंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट को मैं एक नए अंदाज से आप सबके सामने रखने जा रहा हूं और नया अंदाज यह है कि मैं एक उपन्यास का एक बहुत बड़ा अंश आप सबको पढ़कर सुना रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि इसे सुनाने में कितना वक्त लगेगा और यदि वक्त बचा तो हो सकता है कि मैं अपने तरीके से अपनी ओर से कुछ इसकी व्याख्या करूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसकी व्याख्या करनी न पड़े। बेहतर होगा कि इस अंश का अर्थ आप सब अपने अपने ढंग से लगाएं, देखें कि आप इसमें से अपने लिए क्या निकाल पाते हैं, किन बातों को पकड़ पाते हैं। एक बात मैं जरूर शुरू में ही कहना चाहूंगा और वह यह कि जिस अंश को मैं पढ़ने जा रहा हूं वह सामान्य अंश नहीं है, यानी कि सामान्य अंश कहने का अर्थ कि बहुत सरल नहीं है। इसमें थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, थोड़ी सी गहराई भी है, थोड़ी सी सिंबॉलिक तरीके से भी बात कही गई है, इसलिए आपके लिए यह जरूरी होगा और इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि आप इसे बहुत ध्यान से सुने और हो सकता है कि एक बार में इसका जो सार है, इसका जो कथ्य है, जो बात कहना चाह रहा है लेखक, वो आपकी पकड़ में न आए तो आप दोबारा इसे सुने और पकड़ने की कोशिश करें। इसी बहाने से ही दिमाग को थोड़ी तकलीफ दें या यूं कह लीजिए कि दिमाग को थोड़ी एक्सरसाइज कराएं, दिमाग का योगा कराएं, कसरत कराएं ताकि वह फर्टाइल हो सके, अधिक से अधिक उर्वरक बन सके। तो आपको मित्रों थोड़ा विशेष ध्यान देकर इस अंश के साथ यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए यदि आप कुछ और काम कर रहे हो, जैसा कि मुझे ईमेल के जरिए पता लगता रहता है कि आप सब इसे सुनते हैं, तो कोई रसोई घर में इसे सुनना पसंद करती हैं, कोई और दूसरे काम करने के दौरान, इसके लिए आप थोड़ी देर को वो सारे काम छोड़ दें और इसी पर कंसंट्रेशन करके इस अंश को सुने। मुझे ये अंश चूंकि बहुत अच्छा लगा था, मुझे अंदर तक प्रभावित कर गया था, छू गया था, मेरे गहरे तक उतर गया था, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे यह बात अपने प्रिय पाठकों तक भी पहुंचानी चाहिए, हो सकता है कि उन्हें भी यह अच्छी लगे। तो दोस्तों आइए अब मैं उस अंश की शुरुआत करता हूं, उसे ध्यान से आप सुने। बहुत समय पहले एक पक्षी था, उसके दो श्रेष्ठ पंख थे, आलिशान रंगीन और बेहतरीन परों से सजे हुए। संक्षेप में वो एक ऐसा जीव था जो मुक्त रूप से आकाश में उड़ता था और जो भी उसे देखता प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन एक औरत ने उस पक्षी को देखा और उसे उससे प्यार हो गया। वो हैरान होकर उसकी उड़ान देखती, उसका दिल धड़क उठता, उसकी आंखें रोमांचित हो चमक उठती। उसने पक्षी को अपने साथ उड़ने का निमंत्रण दिया और दोनों आकाश में दोषहीन अनुरूपता के साथ उड़ने लगे। उसने उस पक्षी को स्वीकृत किया, सम्मानित किया और उत्सव मनाया। पर फिर उसने सोचा वो शायद दूर किसी पहाड़ की यात्रा करना चाहे और वो डर गई कि कहीं फिर किसी और पक्षी के प्रति उसके मन में शायद ऐसी ही भावनाएं न उभर सकें और उसे ईर्ष्या होने लगी पक्षी की उड़ान भरने की क्षमता से और उसे अकेलेपन का एहसास हो आया। और उसने सोचा मैं एक जाल लगाऊंगी, अगली बार पक्षी आकर उसमें फंस जाएगा और फिर कभी छोड़कर नहीं जाएगा। पक्षी को भी औरत से प्यार हो गया था। वो अगले दिन आया, जाल में फंसा और पिंजरे में डाल दिया गया। वो हर रोज उस पक्षी को देखती, वो पक्षी उसके पास था, उसकी चाहत, उसके जुनून का कारण, और उसने उसे अपने मित्रों को दिखाया जिन्होंने कहा अब तो तुम्हारे पास वो सब है जो तुम चाहती थी। फिर भी एक अजीब तरह का परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब जबकि पक्षी उसके पास था और अब उसे उसको लुभाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, औरत में अरुचि पैदा होने लगी। पक्षी जो अब उड़ने से लाचार था और अपने जीवन के सच्चे अर्थ को व्यक्त नहीं कर सकता था, मुरझाने लगा। उसके पंखों की चमक धूमिल हो गई, वो कुरूप हो गया और औरत ने अब उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। केवल उसे दाना देने और उसका पिंजरा साफ करने तक ही उसकी रुचि सीमित हो गई। एक दिन पक्षी मर गया। औरत को बहुत दुख हुआ और वो सारा दिन उसके ही बारे में सोचती रही। उसे पिंजरा याद ना रहा, वो तो बस उन्हीं ख्यालों में खोई रही जब उसने पक्षी को पहली बार बादलों के बीच संतुष्ट और उन्मुक्त उड़ान भरते देखा था। अगर उसने अपने भीतर और गहराई से झांका होता तो उसे पता चल जाता कि पक्षी की जो बात उसे रोमांचित करती थी वो थी उसकी स्वतंत्रता, लहराते हुए उसके पंखों की ऊर्जा, न कि उसका भौतिक शरीर। बिना पक्षी के उसका जीवन भी अर्थहीन हो गया और मृत्यु उसकी चौखट तक आ पहुंची। तुम क्यों आई हो, उसने मृत्यु से पूछा। मृत्यु ने उत्तर दिया, ताकि तुम एक बार फिर आकाश में उसके साथ उड़ान भर सको। अगर तुमने उसे आने जाने से नहीं रोका होता तो तुम उससे और अधिक प्रेम कर पाती, उसकी और अधिक सराहना कर पाती। हाय, उसे फिर से पाने के लिए अब तुम्हें मेरी आवश्यकता है। मित्रों, यह छोटा सा अंश है, हालांकि मैंने शुरू में कहा था कि बड़ा अंश है, अपेक्षाकृत बड़ा अंश है, लेकिन चूंकि वक्त बचा है इसलिए मैंने कहा कि यह छोटा सा अंश है। मुझे नहीं मालूम फ्रेंड्स कि मैं इसका वाचन कितने अच्छे तरीके से कर पाया हूं, क्योंकि जो प्रभाव होता है शब्दों का, जो ध्वनियों का प्रभाव होता है, वो नो डाउट कि वाचन की शैली पर भी डिपेंड करता है कि उसे कितने अच्छे तरीके से पढ़ा जा रहा है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं इन शब्दों को अपने अंतर मन में उतार कर और फिर आप लोगों के सामने रख सकूं। कितना कर पाया हूं यह तो आप लोग ही समझ पाएंगे, आप लोग ही महसूस कर पाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा जरूर कि आप इसे एक बार ही नहीं, दो बार ही नहीं, बल्कि बार बार सुने। और जब कभी भी आपके मन में निराशा का भाव आए, किसी के बिछुड़ने का दर्द पैदा हो, तो आप इसे फिर सुने और समझने की कोशिश करें कि दरअसल जो प्यार है वो होता क्या है, प्यार रहता कहां है और रहने के बाद वो किस रूप में बना रह सकता है। हम किसी के भी प्यार को, चाहे वो रोमांटिक प्यार हो, परिवार के सदस्यों के साथ प्यार हो, घर परिवार, अपने गांव, अपने देश से प्यार हो, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम उसे खो देते हैं, और जब खो देते हैं और फिर पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तो हम ऐसा क्या करें कि वह खोए ही नहीं। इस तरह के ढेर सारे आपके प्रश्नों के जवाब मुझे ऐसा लगता है कि इस छोटे से अंश में, लेकिन बहुत गहरे भाग में आपको मिल जाएंगे। बहुत छोटा सा लेकिन बहुत गहरा। जब आप इसे बार बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इस पर मनन करेंगे, और मनन करने के बाद जब आप इसे अपने दिल की गहराइयों में उतार करके महसूस करने की कोशिश करेंगे, तब आप सही मायने में शब्द के अर्थ से ऊपर उठ करके इसके भाव के अर्थ तक पहुंच पाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा करके ही एक जो पाठक है, जो ईमानदार पाठक है, वो अपने रचनाकार को सही अवार्ड देता है और उसके साथ सही न्याय भी कर पाता है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि अपनी बात यहीं समाप्त कर देनी चाहिए। मेरा अभिवादन आप सभी को, स्वीकार करें, नमस्कार।